ओम शांति। हमारी बहुत सुंदर स्थिति होती है स्वयं को अनेक संकल्पों से मुक्त करना। सबको याद होगा बाबा ने अपनी पहली मुरली में दो तरह की माया बताई, एक व्यर्थ संकल्प, दूसरा मैं ही राइट हूं। हूं राइट या नहीं? और हम राइट हों तो सोचेंगे क्या मैं गलत हूं? हम राइट हों तो क्या हम ये सोचेंगे मैं राइट नहीं हूं? बोलो, हम तो राइट होंगे ना, तो क्यों सोचेंगे? आपके घरों में सब लोग आपको बुरा भला कहते हों, पवित्रता के बारे में भी कुछ कुछ बोलते हों, कहाँ जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो राय आप सोचेंगे हम गलत कर रहे हैं? हम तो राइट हैं। बाबा हम सभी को मैंपन से मुक्त करना चाहते हैं, तो आज हम फिर से थोड़ी सी चर्चा करेंगे व्यर्थ से मुक्त हमें होना है। व्यर्थ से भी मुक्त होना है और संकल्पों के साथ ही, और साधारण संकल्पों से भी मुक्त होना है। अभी अभी मैं कहीं मधुबन में एक छोटी सी क्लास में यही चर्चा की तो किसी ने उत्तर दिया, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए हम अपने को बिजी रखें। पर किस में बिजी? ये तो नहीं ना हम कामकाज में बिजी हों सारा दिन, भाई हमें व्यर्थ सोचने का समय नहीं मिलता, हम तो काम में इतने बिजी हैं, तो भी तो हम संतुष्ट नहीं होंगे ना। तो हम कुछ ऐसी ठोस बातें अपने पास निकालेंगे आज, जिससे व्यर्थ, पहली चीज है व्यर्थ हो ही कम, क्योंकि अगर व्यर्थ का वेग ज्यादा है तो हम ब्रेक नहीं लगा सकते ना। देखो अब गाड़ी चला रहे हो, जो गाड़ी चलाते हैं वो जानते हैं, मोड़ना हो तो भी ब्रेक लगाएंगे, और तेज चल रही है सामने गाड़ी आ गई हो तो ब्रेक लगाने से पहले गति को धीमी करेंगे, ये नहीं तुरंत ब्रेक लगा देंगे। तो हमें सबसे अच्छी स्थिति ये बनाने का लक्ष्य रखना है कि हमारे संकल्प ही कम से कम हो, धीमी गति हो, ताकि ब्रेक लग सके। जो बाबा ने बहुत बड़ा हमें होमवर्क दिया है, सेकंड में फुल स्टॉप, माताएं जानती है ना इतनी अंग्रेजी, फुल स्टॉप। और बाबा ने कभी कहा फुल स्टॉप वो लगा सकेंगे जिनके पास फुल स्टॉक होगा। किसका स्टॉक? अनाज का, सर्व खजानों का, शक्तियों का, ज्ञान का स्टॉक चाहिए, ज्ञान का, शक्तियों का और बाकी सभी खजानों का। तो हम साधारण संकल्पों से भी परे चलेंगे, तब हमारे मन में संकल्पों की गति धीमी रहेगी। मनुष्य का मन ऐसा है कि वो हर चीज पे सोचता है। अभी मैं मधुबन में था, अभी वहीं से आया तो बाहर एक ग्रुप मिल गया, वो गर्म थे, हमें तो पता नहीं था, हम तो अपनी क्लास करा के, मैं लक्ष्मण भाई साथ था बैंक वाला, तो माताजी चार थे, दो वो और दो बच्चे। माताजी पूछती है क्या आपके यहाँ हर मेंबर को हर साल आना जरूरी है? उसके पूछने में भी गर्मी थी, तो वो उससे पूछ रही थी, मैंने कहा नहीं ऐसा तो आ भी नहीं सकते, हमारे इतने मेंबर्स हैं, हर साल सब आए तो हमें भी मुश्किल हो जाए। फिर वो भाई पूछता है, क्या आप दूसरे धर्मों की ग्लानी भी करते हैं? मैंने कहा, मेरा उत्तर सुने बिना ही वो कहता, देखो वो तुम्हारा ग्लानी कर रहा था, और वो इतना गर्म कि मैंने जगह दी है सेंटर के लिए, मैं जाते ही वापिस ले लूंगा, बहुत गर्म बहुत गर्म। अब कौन था, किसने क्या समझा दिया, वो तो पता नहीं। मनुष्य के मन में देखते ही कुछ कुछ संकल्प चलते है ना। अब वो व्यक्ति, उसको वो इतने गर्म हो गए थे कि वो कोई अच्छी बात सुनना नहीं चाहते थे। अब तुम्हारे यहाँ ये गलत है। समझाने वाले भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, कई तो ऐसा ही कह देते हैं बाकी सब धर्म झूठे हैं, हमारा ही सच्चा है। तो नशा जिसको जितना ज्यादा होता है ना, बाबा तो आया है सब धर्मों का विनाश कराने, अब ये सब धर्मों का विनाश होगा। वो तो सोचते हैं हम सच बोल रहे हैं, पर सुनने वाला सच सुनने के लिए तैयार है या नहीं, ये भी तो सोचना चाहिए। नए जो होते हैं ना समझाने वाले, वो जरा ज्यादा ही कुछ समझा देते हैं। जब ज्ञान में पुराने हो जाते हैं तो मैच्योर हो जाते हैं, समझ में आता है क्या समझाना चाहिए क्या नहीं। तो मनुष्य के मन की गति ऐसी है, न जाने हम सारा दिन क्या क्या सोचते हैं। तो पहले हम कुछ ऐसी पॉइंट्स निकालें जिनके आधार से हमारे संकल्पों की स्पीड धीमी हो जाए। बोलो, उनमें से आप चुनेंगे अपने लिए। अभी जैसे मां मधुबन में मैंने ये प्रश्न किया तो एक माता ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। वो सचमुच अच्छा है कि मैं ध्यान रखती हूँ मेरे अंदर जो संकल्प चले, क्या ये बाबा को प्रिय हैं? तो लगेगा भाई ये बाबा को प्रिय नहीं है। हमें भी तो प्रिय नहीं होते व्यर्थ संकल्प, स्वयं को भी तो प्रिय नहीं होते ना। तो कहा मुझे इस संकल्प से बहुत सारे संकल्पों को समाप्त करने में मदद मिलती है। ऐसे ही हरेक के अपने कोई प्रिय संकल्प होते ही हैं। बहुत माताओं को मैंने देखा वो केवल एक संकल्प के आधार से निर्संकल्प रहती हैं। कौन सा होगा वो संकल्प? बाबा बैठा है। देखिए बात छोटी सी है लेकिन शायद सबसे बड़ी है। अनेक चिंताएं, जिम्मेदारियों के बोझ, किसी को बच्चों की चिंता, उनके भविष्य की चिंता, वर्तमान की, बीमारियों की, किसी को कर्ज की चिंता, किसी को काम धंधों की चिंता, और भोली माताएं बिल्कुल, जिन्हें देखकर आप कहेंगे इनके पास ज्ञान तो ज्यादा है ही नहीं, बाबा है ना, सब ठीक कर देगा, और उनका ठीक भी करता है। और जो बुद्धिमान है वो सोचते ही रहते हैं बाबा ठीक करता नहीं। ये बात प्रैक्टिकल में देखने में आती है। मेरे से बहुत लोग ये प्रश्न लेकर ही आते हैं, हमने बाबा के लिए इतना इतना काम किया, सुनाते अपनी सारी कहानी, बाबा हमें मदद नहीं करता, उसने कुछ नहीं किया उसको बहुत मदद करता है। प्रैक्टिकल में क्यों इनको मदद नहीं हो रही? पहला संकल्प ही गलत हो गया ना, मैंने किया अहम हो गया। जहां श्रेष्ठ कर्म के साथ मनुष्य के अंदर अहंकार हो वहां पुण्य कर्म का फल आधा तो वही नष्ट हो जाता है, और अहंकार रखते रखते उसके पुण्य कर्म उसे बल भी नहीं देते हैं। तो कुछ लोग अच्छे काम करके भी बुरे संकल्प कर रहे हैं, मैंने ये किया, देखा मैंने पूछती नहीं है, अब संकल्पों की गति तेज हो रही है, मैंने ये किया हमारा सम्मान नहीं है, मैंने ये किया मेरी राय भी नहीं लेते। तो हमें अब इन सब संकल्पों को शांत करने के लिए क्या संकल्प रखना है? मैंने आपको कुछ संकल्प बताए, अब उत्तर आप देंगे। मैंने ये किया, इसमें हम अपनी ऐसी धारणा बनाएं कि श्रेष्ठ कर्म किया और उसकी अविद्या हो जाए। मैंने ये किया, मैंने बहुत त्याग किया, मेरा भी अधिकार है, ये बात भूल जाए। महाभारत में दिखाया है कहीं धर्म चर्चा करते हुए श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं युधिष्ठिर को। जब युधिष्ठिर कहता है कि भीष्म पितामह भी तो धर्म के बहुत ज्ञाता हैं, वो फिर भी दुर्योधन को साथ क्यों दे रहे हैं, तो उसने उत्तर दिया है कि धर्म के तो वो ज्ञाता हैं, पर वो अभी तक मोह से मुक्त नहीं हुए हैं। बहुत सूक्ष्म बात कही है माँ। उनको अपने त्याग का और मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत निभाया है इसका अभिमान है, वो इसलिए दुर्योधन को साथ दे रहे हैं, उसे सत्ता से मोह है। बहुत अच्छा डायलॉग है कि श्री कृष्ण पूछता है युधिष्ठिर से कि भीष्म पितामह तुम पांडवों को बहुत प्यार करता है तुम समझते हो ना, लेकिन साथ किसे देता है, तो क्या उसे धर्म का मर्मज्ञ माना जाएगा? जो धर्म वालों को साथ नहीं दे रहा है, पापियों को साथ दे रहा है और समझता है मुझे धर्म का सबसे ज्यादा ज्ञान है। तो ये जो मैंपन है, अभिमान है, चाहे वो त्याग का अभिमान भी हो जाए, ये मनुष्य को व्यर्थ संकल्प चलाने में मदद कर रहा है। किया था पुण्य, चल गए व्यर्थ संकल्प। तो व्यर्थ संकल्पों से हमें ध्यान रखना है, हमारी आत्मिक शक्ति नष्ट होती है। शक्ति कहाँ रहती है? मन में। आत्मा की जो ये दो मुख्य शक्तियां हैं, मन और बुद्धि, शक्तियां रहती हैं मन में और विवेक रहता है बुद्धि में। जितने व्यर्थ संकल्प चलेंगे मन की शक्तियां नष्ट होती जाएंगी, और हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। हम लक्ष्य बना लें, एक बहुत सुंदर लक्ष्य। अगली बात कि अगर हम अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाएंगे अर्थात व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, तो हम थोड़े समय में ज्यादा काम कर सकेंगे। मैं क्लासेज में बहुत बार बाबा का एक महावाक्य सुनाया है, एक साल पहले, दो डेढ़ साल पहले रिवाइज होकर भी आ गया है। जो बच्चे साक्षी भाव में स्थित रहते हैं वो एक मास का काम एक घंटे में कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। शिव बाबा तो सालों सालों का काम एक सेकंड में कर लेते हैं, क्योंकि संपूर्ण रूप से निर्संकल्प हैं। लेकिन वो आत्माएं जो साक्षी भाव में हैं, साक्षी भाव माना संसार के खेल को देखते हैं, क्वेश्चंस नहीं, उनकी मन की शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। तो हम एक लक्ष्य बना ले, हमें संसार के लिए कुछ करना है। कुछ कुछ करती है, नहीं थोड़ा कुछ, यहाँ कुछ का अर्थ होता है बहुत कुछ करना है, तो शक्तियां जमा करनी है। आने वाले समय में जिन्होंने शक्तियां जितनी ज्यादा जमा की होंगी वो संसार की उतनी ही भलाई कर सकेंगे। ये संकल्प हमें व्यर्थ को समाप्त करने में मदद करेगा। साक्षी भाव बढ़ाना है। सोचें, देखो मैं भी अपने पास एक संकल्प रखता हूँ, आप भी रख लें। आप में से कई रखते होंगे कि बाबा ऊपर बैठा है ना, दोनों वो मालिक हैं, यज्ञ के भी मालिक और संसार के भी मालिक। मालिक कहेंगे ना, भले ही बाबा कह दे मैं इस संसार का मालिक नहीं हूं, पर मालिक तो वही है ना। वो तो इसलिए कहता है, नहीं तो कई बच्चे प्रश्न पूछने लगते हैं, कलयुग के तुम मालिक हो तो ये सब क्यों हो रहा है, पर मालिक तो वही है ना। तो जो मालिक है वो ऊपर बैठकर निर्संकल्प है ना, और हम जो निमित्त हैं वो परेशान हो रहे हों। सोचना, अपने से बातें करें, उसको सारा संसार चलाना है और आपको अपना एक छोटा सा घर चलाना है। संसार को चलाने वाला आनंदित है और एक छोटे से घर को चलाने वाले परेशान हैं। सोचें आप, और क्या हमारी परेशानी हमारी समस्याओं को समाप्त करेगी? और सोचें, कोई भी समस्या आपके सामने परिवार की, बच्चों की है, आप उससे परेशान रहते हैं, आप उससे चिंतित रहते हैं, क्या समस्या हल होगी? बहुत सुख संवाद सबको ध्यान रखनी है, जिनके बारे में हम चिंता ज्यादा करते हैं तो हमसे उनको क्या जाता है? नेगेटिव वाइब्रेशंस, कमजोर संकल्पों की कमजोर शक्ति कहें उसे, वाइब्रेशंस जाएंगे ना। तो बच्चों के लिए आप चिंता कर रहे हैं, माँ चिंता कर रही है बच्चों के लिए, तो क्योंकि माँ से बच्चे सीधे जुड़े रहते हैं तो आपकी कमजोरी उनको और कमजोर बनाएगी और परेशानी बढ़ेगी। सभी ध्यान रखें इस बात का। इसलिए चिंता करने से काम सुधरेंगे नहीं, चिंता नहीं, प्रैक्टिकल करना होगा ना। एक व्यक्ति बीमार है, वो हमारे घर में है, हम उसकी चिंता तो करते रहे लेकिन हॉस्पिटल न ले जाएं, होगा फायदा? हमें अपने कर्तव्य करने होते हैं, चिंता नहीं। चिंता हमारी शक्तियों को भी नष्ट करती है और दूसरों को भी कमजोर करती है, इसमें हमें संभलना है। चिंताओं का ये समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत चिंताएं होंगी दुनिया में, बढ़ भी गई हैं और आगे बढ़ेंगी। क्या संकल्प करें जो हम चिंताओं से मुक्त रहें? बोलो, कोई पावरफुल संकल्प सुनाएं, स्वमान सुनाएं। हाँ, ये भी कहीं काम आएगा, मैं विघ्न विनाशक हूं। और सोचो, मैं संकट मोचन हनुमान। वेरी गुड, और बोलो इंद्र प्रताप, तुम क्या हो? बोलो, माताएं बोले मास्टर सर्वशक्तिमान। तो हम इनको अच्छे वाइब्रेशंस दें, हम अपने को जरा संभालें। बच्चों की चिंता आपको हो रही है, निश्चित बच्चे कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे, वो योग्य नहीं होंगे, उनका भविष्य आपको अंधकार में दिखाई देता होगा। एक फादर मेरे पास आए, उसका लड़का भी ज्ञान में, बुद्धि कम, दुकान है वहां बैठते हैं, वो कुछ भी नहीं करता, बैठा रहता है, मिट्टी का माधो। सुना ये शब्द आपने? देखने में अच्छा लंबा चौड़ा, लेकिन कहते हैं भाई इन चीजों की पैकिंग कर दो, एक दो पैकिंग करके बैठा रहता है। आई ये लड़का मुझे बहुत फोन करता है, मुंबई का है, तो इसको माँ बाप बहुत डांटते हैं। मेरे से पूछा, लड़ाई हो रही घर में, माँ ने फोन किया, ज्ञान में है वो भी, कि हम बहुत चिंतित हैं इसका भविष्य क्या होगा। आप ऐसी परिस्थिति पे विचार करें, बच्चे की बुद्धि कम है, वो बड़ा हो गया, वो 25 साल से ज्यादा का है, उसकी बुद्धि इतनी कम है कि उसके घर में ही काम धाम होते हुए भी वो कुछ नहीं करता। कभी कहेगा बहुत उमंग में, भाई जी मैं 7 दिन रोज अमृत वेले उठा, सब ठीक हो गया है, बड़ी खुशी में, भावुकता से। 7 दिन के बाद फिर फोन आएगा, अब मेरे से उठा ही नहीं जाता, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत तंग हैं, खुद समझता है बहुत तंग है। ये सब परिस्थितियों के उत्तर क्या हैं? आत्माएं अपने साथ जन्म जन्म का सब कुछ लेकर आई है ना, किसी को दोष दिया ही नहीं जा सकता। जो कुछ किसी के साथ हो रहा है उसका ही, उसके ही पूर्व का परिणाम है। तो हम सहज भाव से लेंगे तो बिगड़ी हुई बातों को सुधार सकेंगे। ये नहीं कि बिगड़ने देना है। मैंने फिर उसके माँ बाप को समझाया कि आप इससे एक काम तो ले सकते हो। कहा बताओ कौन सा काम ये कर सकता है। मैंने कहा जब तुम अपने बिजनेस में दुकान बड़ी है थक जाओ, तुम्हें खाना खाने घर जाना हो, रेस्ट करना हो, इसको पहरे पर बैठा के चले जाओ कि तुम संभाल करना। कहा यार ये बात तो हमने कभी सोची नहीं थी। मैंने कहा हमें पता है बाबा ने, हमारे यहाँ अर्जुन भाई एक होता था है, जो पुरानी माता है वो जानती होंगी, मधुबन में अर्जुन दादा, उसको बुद्धि बहुत कम थी। बाबा को ऐसे 5 बच्चे मिल गए थे शुरू में ही, 5। उनके परिवार वाले साहूकार थे, उन्होंने कहा दादा आपको हम हर मास इतना पैसा देंगे, आप इन बच्चों को संभाल लो, ये आ भी आपके पास गए। वो आकर्षित होकर आ गए ना बाबा के पास, किसी को माँ ले आई, किसी को बाप ले आया, बुद्धि उनको कम थी। तो उनमें से 2 तो यहीं से गुम हो गए थे, यहाँ आबू से ही, जब आबू में आए घूमने निकल गए कहीं, फिर कहाँ गए ये किसी को पता नहीं। 1-2 की मृत्यु हुई, अर्जुन दादा बचा था। तो बाबा ने देखा ये भी, इसका बाबा से बहुत प्यार, बाबा को देखते ही वो ऐसे करने लगता था खुशी में। तो बाबा ने क्या किया, जब पांडव भवन बना ना तो उसको पुलिस की ड्रेस पहना दी, सलूट मारना सिखाया और उसको बाहर गेट पर बैठा दिया, जहां निर्भय भाई का ऑफिस है ना उसके आगे बैठा दिया। और जब क्लास होती थी सब अंदर होते थे, बाहर कोई नहीं, तब थे ही थोड़े से, तो वो बाहर बैठा रहता था, कोई भी आता था समझता था भाई पुलिस वाला बैठा है। तो हमने भी सीखा कि देखो बाबा ऐसा बुद्धिमान, ऐसा उसके मन में सबके लिए शुभ भावनाएं कि हरेक का कल्याण करना, हरेक का भाग्य बनाना वो जानता, उसका अवसर देता। फिर वो अर्जुन, उसकी बुद्धि का विकास होने लगा, हम किचन में आए तो उसको हमें दे दिया गया। अब उसे गुस्सा बहुत आता था, हमने भी देखा कि भाई इससे काम लेना है, तो हमने भी सीख लिया था। हम क्या करते थे, यज्ञ सेवा में एक्यूरेट, मैं उसे कहता था अर्जुन मैं देखो 9:30 बजे आऊंगा। 9:30 कैसे बजते हैं, एक घड़ी होती थी, एक घड़ी यज्ञ में, ऐसी बड़ी एक घड़ी केवल यज्ञ में। तो उसको दिखाता था, देखो छोटी सुई 9 के आगे होगी और बड़ी 6 पर होगी, तब तुम मुझे बुलाना, और तब तक सब्जी धो के रखना, आग जला लेना, सारे बर्तन यहाँ रख देना, बिल्कुल एक्यूरेट 9:30 बजे सब तैयारी करके वो मेरे पास भागा भागा आएगा, चलो सब तैयार है खाना बनाओ। तो हमने बाबा से सीख लिया था कि इसका भाग्य भी बनेगा और हमें फायदा ही फायदा। सारा काम करके उसे कह देता अर्जुन ये सारे बर्तन बाहर रख देना, यहाँ सफाई धुलाई कर देना, यज्ञ सेवा में एक्यूरेट, एक भी चीज इधर से उधर कमी नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट। चाय बनानी होती थी मुझे शाम को, तब 4 बजे बनती थी, तो मैं उसको सिखाया हुआ था 3:30 ऐसे बजते हैं, 3:30 बजे तुम आना, आग जलाना, 2 बाल्टी पानी डालना, 1 बाल्टी दूध, और जब वो उबल जाए तो मुझे उठाना, मैं चाय बना दूंगा। वो एक्यूरेट करता था, बिल्कुल एक्यूरेट, 2 बाल्टी पानी डालेगा, 1 बाल्टी दूध, उसको उबाल देगा और मुझे बुलाने आएगा, चलो सब तैयार है चाय बनाओ। तो दूसरों से सेवा लेना ये बाबा ने बहुत अच्छी तरह सिखाया, इससे उस आत्मा का भाग्य बना। वो बाबा को देखकर बहुत खुश होता था और बाबा को एक ऐसा हैंड मिल गया भाई, कोई बाहर बैठना नहीं चाहता था, उसको अपना पुलिस की ड्रेस पहना के बाबा आएगा तो सलूट करेगा बाकायदे। हम सभी चिंता छोड़ें और हरेक को आगे बढ़ाने का घरों में भी मार्ग ढूंढ लें। माताएं ये न सोचें मेरा हर बच्चा बहुत बुद्धिमान और होशियार होगा, ऐसा संभव नहीं होता। आपको 4 बच्चे हैं तो 4 अलग अलग ढंग के होंगे ना, किसी का कोई संस्कार, किसी का कोई संस्कार, उस अनुसार उनके साथ चलने से मन निर्संकल्प रहेगा। तो हम बाबा की तरह साक्षी होंगे, बाबा देखो आप ऊपर बैठकर दोनों बाबा नीचे के लिए संकल्प चलाते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, साक्षी होके देखते हैं और साथ में सकास भी देते रहते हैं। हम भी जहाँ चिंता की बात, कोई परेशान करने वाली बात हो, कोई बात मन को भारी करने वाली हो, उन आत्माओं को जरा सकास दें, उससे हमारा चित्त शांत होगा, वो आगे बढ़ जाएंगे। सकास देना एक ऐसी विधि है जो हमें और दूसरों को शांत करती है। माताएं भी सब ध्यान दें, जिन बच्चों की आपको चिंता होती हो उन्हें रोज 10 मिनट सकास देना प्रारंभ करें। कुछ दिन पहले बाबा के वरदान में या मुरली में एक बहुत अच्छी बात आई थी, जो जो आत्माएं तुम्हारे संपर्क में आती हैं, सवेरे उठकर याद कर लो जरा, यानी उन्हें सकास दे दो। एक बार की बात सुना हूं आपको, मनोहर दादी बीकानेर की रानी से मिलने गई तो मिली, बहुत अच्छा हुआ, उसको ज्ञान आदि सुना के आ गई। तो बाबा ने एक दो दिन के बाद मनोहर दादी से पूछा कि तुम उस रानी को याद करती हो? तो क्या कहा होगा दादी ने, जैसा हम सब कहेंगे, हम क्यों याद करें उसे बाबा, हम तो बाबा को याद करेंगे ना, उसे क्यों याद करें? और बाबा ने उत्तर दिया, उसे याद किया करो। मैंने जब ये बात सुनी थी बहुत साल पहले तो मुझे समझ में आया था कि ये कर्म गति और बाबा के कहे हुए महावाक्य, जिनको कई लोग समझते नहीं, थोड़ा गहराई से समझेंगे हम योगयुक्त होकर जिस आत्मा को याद करेंगे, आत्मा को, उसको सकास जाएगी। मान लो मनोहर दादी उसे योगयुक्त होके याद करती है तो उसको मनोहर दादी की याद आएगी ना, और मनोहर दादी की याद आएगी तो क्या याद आएगा? नहीं, बाबा का उसे न पता हो, जो ज्ञान चर्चा हुई थी वो याद आएगी ना। तो हम भी ऐसे ही सकास दिया करें। बाबा ने 2-3 साल पहले नीचे टीचर्स को मिलते हुए एक बहुत गहरी बात कही थी, बहुत लोगों ने तो वो सुनी नहीं कि कुछ कहा भी है, बहुत कम आत्माओं ने उसको ग्रहण किया होगा। रोज सवेरे उठकर बाबा से दृष्टि लिया करो और संसार को दृष्टि दिया करो। बहुत सुंदर बात है, अति गुह्य। मैंने बहुत से पूछा तो बहुत टीचर्स कहते हैं कब कहा था, ऐसा कहा था क्या बाबा ने? अब मैं मुरली की डेट तो कोई याद रखता नहीं, जो उन्हें कह दूं ये पढ़ लेना, मुझे याद रहती। ये बात मुझे बहुत प्रिय लगी थी कि सवेरे सूक्ष्म वतन में हम बाबा के सामने जाकर उसकी दृष्टि लें और यहां से संसार को दृष्टि दें। ये सकास देने की एक विधि है, इससे हमें नए नए अनुभव होंगे। हम सबको याद रखना है, शुरू में बहुत सारी सेवा दृष्टि से हुई थी ना, ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो इतना ही था, तुम आत्मा हो, इसके अलावा कुछ नहीं। दृष्टि से सेवा हुई थी सारी, अंत में भी ज्ञान तो लगभग लोप होने लगेगा, तुम आत्मा हो और बाबा, इतना ही रह जाएगा, लेकिन सारे काम होंगे दृष्टि से। इसलिए अभी से हम ये अभ्यास शुरू करेंगे, सवेरे बाबा से दृष्टि लेना और सारे संसार को देना। समझते हैं ना सभी, बहुत अच्छी सेवा हो जाएगी। तो सभी ध्यान दें, विशेष रूप से अपने से बात करें, मुझे व्यर्थ संकल्प किस कारण से ज्यादा चलते हैं? एक है कि संकल्पों की गति को ही धीमा करना, अब दूसरा है अनुमान के कारण संकल्प चलते हैं, फीलिंग आती है उसके कारण संकल्प चलते हैं, दूसरों को देखकर उनके बारे में चिंतन चलता है जिसे परचिंतन प्रदर्शन कहते हैं, या जीवन में कहीं असफलता मिलती है उसके कारण ज्यादा संकल्प चलते हैं, कोई अपमान कर देता है उसके कारण संकल्प चलते हैं, हमने जिनके लिए जीवन में बहुत कुछ किया है उनसे अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता तब संकल्प ज्यादा चलते हैं। क्यों? ईर्ष्या के कारण संकल्प हैं। संकल्पों के बहुत कारण हो सकते हैं ना, भय के कारण संकल्प हैं। ऐसे बहुत लोग हैं आजकल दुनिया में जो भय के कारण बहुत संकल्प चलाते हैं। क्या होगा? कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, सोचते रहते हैं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, अनुमान, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं, दूसरों को सोचने की फुर्सत हो या ना हो ये सोचते रहते हैं, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। अनुमान भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है ना मनुष्य की। तो इन सब में पहले हम चेक करेंगे मेरे पास व्यर्थ का मुख्य कारण क्या है। जो छोटे बैठे हैं सभी वो ध्यान दें, मन में व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हों तो बुद्धि का विकास रुक जाता है। मन में तेज संकल्प चलते हों मेमोरी पावर वीक हो जाती है, बुद्धि की ग्रहण शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। ध्यान देंगे सभी, एकाग्रता भंग होती है। कुछ हमारी अपनी चीजें हैं जो हम जानते हैं, हमारा हर संकल्प हमारी स्थिति पर असर डालता है, हमारा हर विचार हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता है, हमारा हर विचार हमारे भविष्य पर असर डालता है। बहुत ध्यान देंगे, जो हमारा जीवन अब है, सुख या दुख, सफलता या असफलता, खुशी या गमी, बहुत जीत होती है या बहुत हार होती है, उस सब के जिम्मेदार हैं हमारे पास्ट के संकल्प। और जो संकल्प अब हम चला रहे हैं वैसा ही बनेगा हमारा भविष्य का जीवन। मेरे पास युवक भी बहुत आते हैं, मैंने पहले भी एक बात सुनाई थी वो मुझे ज्यादा याद रहती है। आगरे में मैं था, एक कुमार अच्छा पढ़ा लिखा, MBA कर लिया था उसने, लेकिन एक संकल्प उसको छोड़ नहीं रहा था, मुझे सफलता मिलेगी ही नहीं। कुछ लोग तो ये कहते हैं सफलता मिलती नहीं है, ये कह रहा था मिलेगी ही नहीं। मैंने कहा तुम्हें किसने बता दिया ये, तुम ज्योतिषी हो क्या कि अपने भविष्य को जानते हो? कहा नहीं, पर मैं जहां देखता हूं ना मुझे सफलता मिलती ही नहीं। मैंने पूछा MBA ऐसे ही कर लिया? कहा कर तो लिया। देखिए मनुष्य कितना कमजोर हो जाता है, उसने MBA कर लिया, उसमें अच्छे मार्क्स ले लिए, तो भी कहीं उसके अंतर मन में ये विचार बिल्कुल बैठ गया था कि मुझे सफलता मिलेगी नहीं, मेरे भाग्य में नहीं है। ज्ञान में है वो कुमार, उसके परिवार ज्ञान में है। मैंने उसे कहा इस संकल्प को बदल नहीं सकते, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा कि ये संकल्प भी कुछ गड़बड़ कर रहा है। मैंने एक दिन के लिए उसे प्रैक्टिस कराई, बहुत अच्छी, मास्टर सर शक्तिवान की। दूसरे दिन फिर आया वो मेरे पास, मैंने बुलाया था तो प्रैक्टिस तो की। मैंने उसे पूछा अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा, पर मुझे सफलता तो नहीं मिलेगी ना, इससे सफलता थोड़ा ही मिल जाएगी। उसके बुद्धि से ये विचार निकालना, मुझे लगा मैं तब तो निकाल दिया था, लेकिन मुझे लगता था कि कल फिर आ जाएगा ये वापस, क्योंकि इतना गहराई से भर लिया था ये विचार, उसको जीवन में कहीं भी सफल नहीं होने देगा। मैं उसे बहुत समझाया कि तुम अपने मार्ग में कांटे बो रहे हो, बैरियर खड़े कर रहे हो, ये संकल्प आया कहां से तुम्हारे पास? तुमने BA फर्स्ट क्लास किया, फिर MBA कर लिया, तुम एक बुद्धिमान स्टूडेंट रहे हो, निकाल दो इसको। उसका फादर भी कहता, हम भी इसको समझाते हैं, पर ये निकालता ही नहीं। तो देखिए कभी कभी मनुष्य अपने व्यर्थ विचार के इतना अधीन भी हो जाता है। हमें संभलना है कि कोई व्यर्थ विचार हो सकता है वो पिछले 5 सालों से चला आ रहा हो। आज मुझे मिली एक विदेश की माताजी भयभीत, क्यों भयभीत है ये पता नहीं, तो पूर्व जन्मों का कुछ चला आ रहा हो, 100 साल का 500 साल का जो भय का संस्कार उसके अंदर गहराई में उतर गया है। हमें ध्यान देना, ऐसी कोई चीज अगर आ गई हो जीवन में उसे स्वमान के संकल्पों से समाप्त किया जा सकता है। दुनिया में ये नहीं जानते उसे कैसे समाप्त किया जाए। हमारे पास स्वमान बहुत बड़ी चीज है। स्वमान का अभ्यास करेंगे, मान लो भय है इसे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा अमर हूँ, मृत्यु का भय होता है ना, मैं आत्मा अमर हूँ, मेरी मृत्यु होती ही नहीं, ये पक्का अभ्यास करेंगे तो भय धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो कोई भी ऐसा व्यर्थ, कोई भी ऐसी कमजोरी जो व्यर्थ को बढ़ावा देती हो उसको हमें छोड़ना है। एक दो बातें और कर लें, बहुत अच्छी एक आदत अपनी बनानी है, बातों को जल्दी जल्दी खत्म करना, नेचर बनाएं सभी। कईयों की नेचर ऐसी है एक बात हो गई तो सारा दिन लगे रहेंगे, अगले दिन तक भी उसे छोड़ेंगे नहीं, मैं सत्य हूं सिद्ध करके, एक के पास सिद्ध करेंगे फिर दूसरे के पास जाएंगे, कितने कितनों के पास जाएंगे सारा दिन। बातों को जल्दी जल्दी खत्म करना, हो सकता है सब सोचें इस पर, बातें तो रोज आती रहती हैं, उनके विस्तार में जाएंगे तो और बहुत सारे व्यर्थ को जन्म देंगे। छोड़ दो, एक संकल्प करो छोड़ो, आगे बढ़ो, रुकना हो गया ना, हम यात्रा में रुक गए, अगर हमने कोई बात पकड़ ली और बैठ गए, रुक गए ना, तो बहुत अच्छी आदत डालें, बातों को जल्दी से जल्दी फुल स्टॉप खत्म। दूसरी चीज, जीवन में उन चीजों को स्वीकार कर लें जिन पर हमारा अधिकार नहीं है। ये बहुत सुंदर धारणा है जीवन की, उन बातों को स्वीकार कर लें जिन पर हमारा अधिकार नहीं है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते उन्हें हम स्वीकार कर लें। पसंद है? अब देखो आगे भविष्य में संसार में क्या क्या होगा, हम चाहेंगे ये ना हो तो रुकेगा, वो होगा क्योंकि उस पर हमारा अधिकार नहीं, वो होना है, उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा और आनंदित रहना होगा। ये बहुत सुंदर धारणा है जीवन की, स्वीकार करना। जो मनुष्य स्वीकार कर लेता है वो जीवन को एंजॉय करता है। मान लो हम यहां से जा रहे हैं, कुछ भी हुआ, हम गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, अच्छा फ्रैक्चर हो गया, अब दो स्थिति हैं, हम परेशान होते रहे, अरे आज क्लास में गए ही क्यों थे, हमने बड़ी गलती कर दी, न जाते तो ये होता ही नहीं, अब संकल्प चल रहे तेजी से, फिर डॉक्टर साहब ने प्लास्टर लगा दिया, कहा 15 दिन खाट पे ही बैठे रहना, अब चलना फिरना मना है, अब चिंतन शुरू हो गया, कैसा मेरा जीवन है, पता नहीं मैंने भी क्या क्या पाप किए, मुझे ही होना था, मेरी जगह कोई और गिर जाता तो अच्छा होता, संकल्प चला रहे हैं, सुख समाप्त कर लिया और एक दूसरा व्यक्ति है गिर गए, ठीक है कोई हिसाब पूरा हो गया, अब 15 दिन शांति के मिल गए, अब अच्छा अभ्यास करेंगे, योग लगाएंगे, बाबा की कुछ अच्छी चीजें क्लास सुन लेंगे, ठीक है, वो उस समय को एंजॉय करता है, वो उस समय को दुखों में व्यतीत करता है। बहुत अच्छी धारणा है जीवन की, जीवन में जो कुछ हो उसे एंजॉय करो, उसका आनंद लो, विनाश को भी तो एंजॉय करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा या नहीं, माताएं क्या सोचती हैं, इतना सुंदर संसार ऐसे ही चला जाएगा, बाबा ने कहा तुम्हारे लिए ही खाली कराना है मुझे ये दुनिया, तुम्हारे लिए, बाबा नहीं कहते बाप पुराना मकान तोड़ के नया बना रहा हो, बच्चों को खुशी होती है ना, लेकिन कोई तोड़ते हुए मकान को देखकर परेशान हो, हमारा तोड़ दिया, लेकिन नया बनेगा ना बहुत सुंदर। तो अपने व्यर्थ संकल्पों को खुद पूर्ण विराम लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, आदत बना लें। बहुत कुछ हम सारा दिन देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं ना, आंखें खुली हैं। हमें अपने चित्त को शांत रखना है, तो इससे हमारा योग अच्छा होगा, हमारा भविष्य अच्छा होगा, क्योंकि बार बार जो हम सोचेंगे वो हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। मैं एक चीज लोगों को आजकल सिखा रहा हूं, एक मिनट की, मेरा कल ऐसा होगा। अपने कल का आप निर्माण करना सीखें, रोज रात को या रोज सवेरे, मेरा आज ऐसा होगा। कैसा? मान लो आज रात अपने अंतर मन में आप संकल्प भरेंगे, मेरा कल खुशियों से भरपूर होगा, मेरा कल सफलता का वरदान लेकर आ रहा है। आप स्वयं सोच लो, अब मेरा कल विघ्नों से मुक्त रहेगा, मेरा कल मेरे सुंदर भविष्य का द्वार खोलेगा, मैं अपने कल का पूरा आनंद लूंगी। विचार करें आप स्वयं, रोज करें तो एक अच्छी आदत बन जाएगी। आपको धीरे धीरे अनुभव होगा, हम अपने कल का स्वयं निर्माण करते हैं संकल्पों के द्वारा। ये सब बातें हमें व्यर्थ को समाप्त करने में मदद करेंगी। व्यर्थ को समाप्त करने की एक बात और, जो जितने सुंदर संकल्प क्रिएट करेंगे, रचेंगे, उनके व्यर्थ संकल्प उतने ही कम होते जाएंगे। हमारे पास एक क्रिएटिव पावर है, रचनात्मक शक्ति, हम अच्छे संकल्प रचें। रोज मुरली से हमें बहुत कुछ मिलता है, उसके आधार से हम संकल्प रचते हैं, उससे व्यर्थ का फोर्स समाप्त हो जाता है। ओम शांति।